ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ
ओम शांति। सतगुरुवार के दिन की विशेष गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने ये अंडरलाइन किया है कि पढ़ाने वाला भी एक ही है और पढ़ाई भी एक ही है और पढ़ाई एक ही समय पर ये पढ़ी जाती, कोई और समय आने वाला नहीं है जबकि हम ये पढ़ाई पढ़ सके, परंतु यही समय है पढ़ाई पढ़ने का और वो एक आया हुआ है पढ़ाने, और उसमें भी फिर भक्ति में भगवान को भोलानाथ कहते हैं, परंतु उसके पीछे क्या भावना है वो तो नहीं जानते, परंतु बाबा के बच्चे जानते हैं। एक मुट्ठी चावल अभी देते तो बाबा रिटर्न में महल देते, और फिर साथ साथ टोटल कर्म फिलॉसफी बाबा बता रहे हैं कि किस तरह से लेना और देना चलता, परंतु वैसे तो कहेंगे कि बाबा ही दाता है तो जो कुछ देते हैं उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं, परंतु जो देता है वो सब कुछ देता। प्रश्न है, बेहद का राज किसका है, राम का या रावण का? तो बाबा ने आज कहा है दोनों का बेहद का राज्य है, राम का भी राज्य बेहद का और रावण का भी राज्य बेहद का। बाबा ने ज्यादा स्पष्ट नहीं किया है, परंतु आप भाव को समझ गए। तो इंटरेस्टिंग, मुरली में बाबा हर रोज बातें सुनाते हैं और आज वरदान भी बहुत इंटरेस्टिंग विशेष है। विशेष उन्नति का ब्राह्मणों को कौन सा भाग्य मिलता? सेवा। सेवा से आत्मा की बहुत उन्नति होती है, परंतु सेवा में ही फिर विघ्न पड़ते हैं। परंतु यदि हम विघ्नों को उस भाव से देखें कि ये हमारे उन्नति की सीढ़ी है, ये हमें और अनुभवी बनाने के लिए आते हैं, तो फिर सेवा का जो लक्ष्य है खुद ऊपर चढ़ाई तो छोड़ो परंतु उड़ने का, वो उड़ने का साधन बन जाता। परंतु एक तरफ सेवा से लिफ्ट मिलती और दूसरी तरफ सेवा में ही विघ्न पड़ती, परंतु हम विघ्नों के वश न हो, विघ्नों के विनाशक बन जाए। एक बुद्धि के फेर की ही बात है, जिस बुद्धि के रास्ते को सोचने का, वृत्ति का बदल लो तो फिर वो उड़ने का साधन बन जाता। ये हमारे विघ्न नहीं है, अनुभवी बनाने, हमें और आगे बढ़ाने का साधन है। तो ये है 11 तारीख की अप्रैल मास की मुरली। सार, मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन भोलानाथ बाप कैसे है? उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसीलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, वो बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। लौकिक में तो बेटे को पहले खूब सारा देना होता, फिर जब बुजुर्ग बनते हैं तो बेटा जाके वो भी जब योग्य बेटा हो लायक बेटा हो वो जाकर माँ बाप की सेवा करते, परंतु ये बेटा ऐसे बेटा जो कुछ भी उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। ये बेटा ऐसा है जो कुछ कभी लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्प काल का मिलता, ज्ञान में समझ से करते इसीलिए सदा काल का मिलता है। ओम शांति। आज पहले पेज में बाबा ने एक ही बात स्पष्ट की है कि कौन मुरली सुना रहा, वो रूहानी बाप भगवान कौन है और सुनने वाली आत्मा कौन है। तो देह अभिमान और देही अभिमानी का कॉन्ट्रास्ट भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूहान कर रहे हैं, वह ऐसे कहेंगे, एक तरह से तो कहेंगे रूहान कर रहे हैं और दूसरी तरफ से बाबा कहते हैं वह ऐसे कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राज योग सिखला रहे हैं। रूहान भी कर रहे हैं परंतु साथ साथ टीचर के रूप में सिखला भी रहे। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसीलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। ये है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति, भगवानवाच शालिग्रामों प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसीलिए वैसे भी आत्मा ही सुनती, परंतु शिव बाबा का ज्ञान धारण करने के लिए बाबा कहते इसीलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाती हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो, बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है शरीर नहीं, परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता, और सब कहेंगे, हम क्या कहेंगे, मेरा शरीर दुखता है, मेरा शरीर भूख लगती है, मेरे शरीर को जो कुछ भी हम कहेंगे मेरा शरीर। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा ये मेरा शरीर है, बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयां, अनेक प्रकार के उनमें सब्जेक्ट्स होती है, बीए आदि कितने नाम है, इसमें एक ही नाम है, पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं, तो बाप को ही याद करना पड़े। तो बाबा एक के पाठ को पक्का करा रहे हैं भिन्न भिन्न रीति से। हमको बेहद कबाब पढ़ाती हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है। कहेंगे फलाने का ये शरीर है, वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है। मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। जब ऊपर में है तो भी कहेंगे वो शिव है। जब नीचे आते हैं, शरीर ब्रह्मा बाबा का धारण करते तो भी कहेंगे शिव बाबा। ये शरीर तो इनका नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं। वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। मनुष्य ने क्यों ये कहा 24 अवतार? बाबा भिन्न भिन्न उत्तर देते हैं सब प्रश्नों के लिए। तो आज बाबा ने कहा है 24 अवतार भगवान को कितना भटकाया है। क्यों? क्योंकि भक्ति में मनुष्यों की बुद्धि भटकने वाली है, तो भटकने वाली बुद्धि ने भगवान को भी भटका दिया है। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है। परमात्मा को ठिकर भीतर सब में कह दिया। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। रामा अनुसार इनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। बाबा समझा रहे हैं, उलैना भी दे रहे हैं, परंतु उलैना कोई नाराजगी से नहीं दे रहे हैं। स्पष्ट करके बता रहे हैं कि राइट बात क्या है, तो बहुत शीतलता से समझाते हैं। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी गिलानी की है। दादी एक कहानी सुनाती थी कि जब दिल्ली में सेवाएं शुरू हुई थी तो एक सरदार जी आते थे, तो उसने प्रश्न पूछा कि बाबा इतना जोश से क्यों बातें करता? कई बार बाबा बंदर कहता है, कई बार बाबा गद्दा कहता है, भिन्न भिन्न प्रकार से। तो दादी ने उसको समझाया ये जोश से नहीं है, वो तो अपनी जो रियल बात है बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। तो वो उस दिनों में कोई छुट्टी इतनी लेने की बात नहीं होती थी, तो वो ट्रेन पकड़ के आबू पहुंच गया बाबा के पास। और बाबा को जब देखा, क्योंकि उस समय तो बहुत ही छोटा, पांडव भवन भी बहुत छोटा था, और जहाँ यीशु दादी की ऑफिस है उसके बाजू में जो टुकड़ा है वहाँ ही थोड़े से ही लोग होते थे, तो वहाँ ही मुरली सुनाती थे। तो बाबा वहाँ मुरली सुना रहे थे और बहुत समीपता का संबंध था। तो वो देख रहा था कि बाबा जब बातें कह रहे हैं, बाबा के चेहरे में वही प्यार की झलक, वही नैनों में शीतलता की झलक, वही रूहानियत। तो बाबा जो शब्द बोल रहे हैं, कोई समझेंगे कि ये तो बहुत स्ट्रांग भाषा बाबा बोल रहा है, परंतु बाबा रियली सिर्फ स्पष्ट करने के लिए हमें बता रहे हैं। बाबा का जो रूप था, बाबा का जो चेहरा था, बिल्कुल रूहानियत और मिठास और शीतलता का। तो फिर वो बाबा को खुद ही बताया कि बाबा मैं आपको चैलेंज करने के लिए आया था कि आप ऐसी स्ट्रांग मुरलियां क्यों चलाते हो, परंतु अभी जब मैंने खुद देखा कि आपका इस तरह का रूप है तो मुझे लगता है कि ये हमारे कल्याण के लिए ही आप एक एक बात स्पष्ट कर रहे हो, परंतु आपके मन में कुछ और भाव नहीं है, हमें सबका उद्धार करने की ही भावना है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे ऊपर कितने अपकार किया है और मेरी कितनी गिलानी की है, और बाबा फिर कितना शीतलता से समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, और बाप कहते हैं, बाबा क्या कहेंगे इस बात पर आप समझ गए, मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता, जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है, भक्ति का भी फल मिल रहा, बाबा को पहचान कर जितना जिसने अपनी कमाई की अभी भी उसका फल मिल रहा, खुशी सुख आनंद का, और भविष्य के लिए भी वो फल जमा होता जा रहा। गायन है ना कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है। वैसे भी कहते हैं कि ज्ञान भक्ति वैराग और ज्ञान चक्कर चलता रहता है, तो कहते हैं भक्ति का फल भगवान देंगे क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो, अब ये ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से, बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर फिर जाते हैं। ये है ज्ञान और वो है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया, परंतु ऐसे है नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम पुकारते आए हो कि बाप आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो, तो अब मैं आया हूं। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज और रावण राज दोनों बेहद है, रावण राज क्वांटिटी में और राम राज बेहद का सुख सारे विश्व का मालिक क्वालिटी में। तो वहां क्वांटिटी बेहद की और वहां क्वालिटी बेहद की, दोनों का टाइम बराबर है। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है। वृद्धि जास्ती न हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना कौन कर सकता है। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया को कम करना बाप का ही काम है, बाप आते ही है कम करने। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं भगवान का अवतरण क्यों होता है, किस कार्य के लिए। तो आज बाबा ने ये बात स्पष्ट की है कि विश्व की पॉपुलेशन को कम करने के लिए भगवान आते हैं। बाप आते ही है कम करने, पुकारते भी हैं बाबा आकर अधर्म नाश करो, अर्थात जब ये कहते हैं अधर्म नाश करो, तो अधर्म से ही इतनी वृद्धि हो गई है, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं, लोगों को बहुत फिक्र है पॉपुलेशन की, तो जानते नहीं है कि भगवान का जो प्लान है वो कुछ अलग ही विशेष ही है। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चले जाती है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आती है। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। कलयुग की आत्माएं इतना समय अपने घर में रही, अभी जल्दी जल्दी आती ही रहती। अपना धंधा आदि पूरी कर बाद में आती हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने। तुम्हारा भी ऐसी ही है, पिछाड़ी में जिनका पाठ है वो पिछाड़ी में ही आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी है वो सत्युग आदि में आते हैं। जिनों का गायन है सारे कल्प में, सत्युग से लेकर लास्ट तक उन आत्माओं का गायन है, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तभी फिर उन्हों को हीरो एक्टर बाबा कहते हैं। परंतु ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले देवी देवता धर्म वाले वही आत्माएं प्रसिद्ध नामी ग्रामी आत्माएं देवताओं के रूप में। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं, ताल तालियां पिछाड़ी तक आती रहती है। हम उस दिन सोच रहे थे कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य बिल्कुल गुप्त, बिल्कुल गुप्त। क्यों? क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहरे होते हैं, अंदर जाते हैं और नजर नहीं आते हैं, और रूट्स की कोई इतनी सुंदरता भी नहीं है, और कोई रूट्स का कोई फोटोग्राफ भी नहीं निकालता, रूट्स की कोई महिमा भी नहीं करते हैं, सारे झाड़ की सुंदरता की महिमा करेंगे, परंतु सारा आधार है रूट्स। तो जो बाबा अभी बाबा के बच्चों को तपस्या करा रहे हैं वो फाउंडेशन गुप्त रीति से चल रहा है। और जो आजकल के कुछ कुछ संत महात्माएं निकले हैं, विदेश में भी उनका बहुत प्रचार हो रहा है, उनका लास्ट की टाल टालिया निकले, थोड़ा समय उनका मान शान रहा, नाम बाला हुआ, फिर तो ओम शांति। तो बाबा का कार्य और अन्य आत्माओं का कार्य, और वो भी लास्ट में आत्माएं आने वालों का कार्य, बहुत ही फर्क है। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती है, और सवेरे सवेरे याद में बैठते हो, वो है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, योग। आज बाबा क्या कहते, बस सिंपल है, आत्मा बाप को याद करे, योग अक्षर छोड़ दो, इसमें ही मूंझते हैं। कहते हैं न सिर्फ बाहर वाले योग शब्द में मूंझते हैं, बाबा के ब्राह्मण बच्चे भी योग शब्द से बहुत मूंझते हैं। तो बाबा को क्या कहते, हमारा योग नहीं लगता। और बाप कहते हैं, अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या बड़ी बात है। आत्मा समझ अपने बाप टीचर सदगुरु को याद करो तो कितनी सहज बात है। क्या ये अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है, एक तरफ वृक्ष के पत्ते हैं और दूसरी तरफ कहेंगे सब मनुष्य पाठधारी है। कितने ढेर मनुष्य है, हिसाब निकालती हैं, एक वर्ष में इतने क्रोर पैदा हो जाएंगे, फिर इतनी जगह ही कहाँ है। तब आप कहते हैं मैं आता हूं लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती है, हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचत है वो भी आते जाते हैं। झार कभी सूखता नहीं है, चलता आता है। 5000 वर्ष तक ये झार की आयु, फिर भी लास्ट में भी कहां कहां प्रकृति की सुंदरता, कहां कहां कुछ किसके पास अच्छी वैल्यूज है, तो कहेंगे कि झार सूखा नहीं परंतु लास्ट तक चलता रहा। पिछारी में जब वहां कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर है। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वे भी जन्म वही लेंगे जो कलप कलप लेते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, सब बच्चे सुनते हैं एक ही समय पर, परंतु फिर नंबरवार समझते। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जासी तो कुछ बनेगा नहीं, इतने वेद इतने शास्त्र तो बन चुके। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। भक्ति के भी अनेक शास्त्र परंतु जितना लिखा सो बस अभी इनफ हो गया, परंतु बाबा के बच्चों की तो कॉपियां भरती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो बाबा कहते हैं कि शुरू से लेकर ये सब इकट्ठा करो तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए, इसीलिए बड़ाई है। कहते हैं भक्ति में इसका गायन बड़ाई का, सागर को स्याही बना लो, हर पेड़ को कलम बना लो, धरती को कागज बना लो, तो भी भगवान का ज्ञान खूट नहीं सकता। और फिर दूसरी तरफ भक्ति मार्ग में बहुत कॉन्ट्रास्ट की बातें बताती हैं। फिर भक्ति में कैसे वो बातें समझ सकती हैं मुझे तो नहीं मालूम, परंतु अजब लगता है कि बिल्कुल ऑपोजिट बातें सुनाती हैं। तो एक तरफ कहेंगे कि सागर और दूसरी तरफ फिर कहेंगे कह देती कि चिड़ियों ने सागर को हप किया। कौन सी चिड़िया? तुम चिड़िया हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कलप कलप तुम यहां पढ़ाई पढ़ते हो, इसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी इतनी प्रारब्ध बनती है। बस अपने पुरुषार्थ के ऊपर ही है, परंतु बाबा समझा 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 करके फिर भी कहते हैं ड्रामा नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। हर एक खुद को देखे तो बिल्कुल क्लियर हो जाता, समझ सकते कि मेरी पढ़ाई पुरुषार्थ कितना, प्रारब्ध कितना। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। एक ही स्कूल एक ही पढ़ाई, परंतु दो डिनेस्टीज तैयार हो जाती। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है। रियलिटी पंडित लोग आचार्य लोग क्यों बाण उसको दिया है समझ नहीं पाते। और फिर एक तरफ दिखाते हैं राम को बाण हाथ में और दूसरी तरफ क्राइस्ट को दिखाते हैं कि बकरी का जो बेटा होता है जो लैम्प होता है उसने अपने कंधे पर रखा। तो ये प्रश्न हमसे गयाना में पूछा गया था कि हम क्राइस्ट को बड़ा माने या राम को बड़ा माने। उसने तो हिंसा की, उसने तो इतना रहम दिल बन करके जानवरों का भी उद्धार किया। तो फिर जब उनको समझाते हैं तो वो समझ गए थे, परंतु पहले तो पंडित लोग तो वहां बहुत है परंतु वो भी कभी ये बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है, जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि बनती। इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करती हैं उनका ऐसा ही फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाती हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगी। कोई धर्मशाला स्कूल बनाती हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहां बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं, बाबा के कुछ कुछ क्वेश्चंस फिक्स थे, स्पेशली जब नए नए आते थे तो बाबा उनसे पूछ करके समझ जाते थे कि उसकी बुद्धि में कहां तक ज्ञान है। तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं तीन लौकिक और एक शिव बाबा। तो बाबा कहेंगे पास, तीन लौकिक का हिसाब बताया तो वो तो फेल। तो शिव बाबा को क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि वह वर्षा देता भी है और लेता भी है, हिसाब है उनका। उनको लेने का कुछ है नहीं, वो तो है दाता। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसीलिए भोलानाथ है। पतित पावन ज्ञान सागर है। अब आप कहते हैं ये भक्ति के जो शास्त्र है उनका सार समझाता हूं। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं भक्ति के फल को फिर भी कहां न कहां कुछ न कुछ सुख की प्राप्ति है, तो सन्यासी फिर उसके लिए क्या कहते, ये सुख काग विष्टा के समान है, इसीलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं. उनको मालूम नहीं है कि सच्चा सुख भी कोई होता है, या हमें अपनी जो कर्म के हिसाब से हमें पालना देनी है वो हमें करनी है, वो चले जाते हैं. कहती हैं, हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए. जो फिर कारण क्यों कहते हैं कि हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, बहुत सिंपल कारण वो बताते हैं. फिर हमको नरक में आना पड़े, स्वर्ग का अनुभव करेंगे तो नरक भी फिर सामने खड़ा है. हमको मोक्ष चाहिए, बस चक्कर से ही हम न्यारे बन जाए. परंतु ये याद रखो कि ये बेहद का नाटक है. इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, बना बनाया है. तब गाते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं. परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है. जो कुछ पास किया है वो फिर होगा. 84 का चक्कर तुम लगाते हो, ये कभी बंद नहीं हो सकता. बना बनाया है. चक्कर को आप कहां पर भी रोकने चाहो तो रुकता नहीं. मुरली बहुत छोटी है तो मैं बीच बीच में कहानियां सुना रही हूं आज. तो इस पर एक विदेश में कहानी है. एक राजा था, समझता था कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं. तो किसने कहा कि अच्छा चलो सागर के पास. तो सागर के कंठे पर ठहरा तो वहां पर जो पानी आता है और जाता है तो वो अपनी हिम्मत दिखाता था कि मैं पानी को कहता हूँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. तो जिस समय पानी को आना था, पानी तो आता ही गया आता ही गया आता ही गया. तो वो न समय को रोक सकते न सागर को रोक सकते. कहने का भाव भक्ति का, वहां की ये भक्ति की कहानी एक सुनाती है. तो बाबा कहते हैं कि ये कभी बंद नहीं होता. इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो? तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो. मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही बात है. शब्द अलग अलग यूज करते, भाव वो एक ही निकलता. अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो. तुम्हारी श्रीमत से सतगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो. वो भगवान के लिए कह देते तुम ही जानो, परंतु भगवान जो कुछ जानता अपने बच्चों को आकर समझाता. तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने. तुम जब आओ तो हम भी जाने और हम भी पावन बने. पढ़ाई पढ़े और हमारी सतगति हो. जब सतगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है. इस समय सबके ऊपर दुख के पहाड़ गिरने हैं. कितनी सीन बाबा ने बता दी है, क्या क्या होने वाला है. खूनी नाहिक खेल दिखाती हैं और फिर गोवर्धन पर्वत भी दिखाती हैं. उंगली से पहाड़ उठाया, तुम उसका अर्थ जानते हो. तुम थोड़े से बच्चे इन दुखों के पहाड़ को हटाने वाले हो. दुख भी सहन करते हो. सहन शक्ति बढ़ती जाएंगी तो इतनी हिम्मत भी होंगी जो हम औरों के दुख को भी दूर कर सके. तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहती हैं तुलसीदास चंदन किसे, सारा वो लंबी श्लोक है, तो बाबा भाव बताते, तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तो अपनी घोट तो नशा चरे, परंतु जो तुलसीदास के लिए कहते हैं, उसने बैठ करके सैंडलवुड को घिसा, चंदन को घिसा, उसमें से तिलक निकला। तो बाबा कहते हैं कि तुमको अपनी मेहनत करनी होगी तो तुमको भी उसका रिजल्ट, उसका फल मिलेगा। तो तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, राजयोग जिससे राजाई मिलती है वो पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, ये दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहां राजाएं महाराजाएं मिलती हैं, ये पाठशाला है। एक तरफ बाबा पहले पढ़ाई के लिए कहते हैं, फिर कहते हैं कि ये कोई दरबार नहीं। तो जो लोग नहीं समझते हैं वो तो उनको तो पहचान नहीं होंगी। बाबा बच्चों को हर बात समझाते हैं। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती है, पतित वायुमंडल को खराब कर करेंगे इसीलिए अलाउ नहीं करती हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहां से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होंगी, ये हुआ अपने आप को श्रापित करना। विकार है ही रावण की मत, राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसे गुरु पुराण में बहुत रोचक बातें लिखती है मनुष्य को डराने के लिए। ये जो सब हिसाब किताब की बातें बताई है कि कैसे पाप का कर्म का हिसाब क्या बनेगा, परंतु फिर भी कहेंगे मनुष्य समझे नहीं। बाबा भगवान शास्त्रों में भी वो बातें भक्ति में लिखी गई है, परंतु फिर भी तमो प्रधानता आती ही गई। और एक रोचक बात बाबा बताते, बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती, तुम्हारी ये पढ़ाई है। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं, और यहां पढ़ाई और कमाई और लड़ाई तीनों ही इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं। मनोहर दादी ये बहुत प्यार से बताती थी कि तुम्हारी पढ़ाई और कमाई और लड़ाई इकट्ठी इकट्ठी चल रही है। मुझे याद आता कि जब मैं छोटी थी और इंडिया में ही थी, तो 6-7 वर्ष की आयु होंगी उस समय, तो हम लोगों को मॉनसून सीजन में गम बूट पहनाते थे क्योंकि बहुत मिट्टी होती थी, बहुत बारिश होती थी। परंतु हमको कहते थे कि और बारिश के सीजन में जमीन पर वो जो अंडरग्राउंड वो जो वर्म्स होती हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो हमको कहते थे कि तुम एक बहुत संभालना, एक पर भी तुम्हारा पाँव पड़ा और वो बेचारा मर गया तो तुम ऐसे ही जन्म लेंगे। और उस समय तो छोटे थे तो सचमुच बिलीव भी करते थे और डरते भी थे। फिर तो जल्दी में ही उसके बाद ज्ञान मिल गया तो वो डर भी निकल गया। परंतु भक्ति की वंडरफुल बातें हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देनी है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की दृढ़ करनी है। बाकी योग योग क्या मूंझना नहीं है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भाव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। घर बैठ जाओ, तपस्या करो, ऐसे कोई सोचता तो नहीं है। यहां संस्कारों की बहुत बातें आती है, तो बाबा ने आज उसका उत्तर दिया है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नोंद है, आनी ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न वा पेपर अनुभवी बनाती हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होंगी और आगे बढ़ते रहेंगे। हमें और सहन शक्ति धारण करनी है, हमें और शीतलता की शक्ति धारण करनी है, और ये भी समझ जाना है कि कहने से क्या होता, ना कहने से क्या होता, ये भी परख शक्ति हो। तो बाबा कहते हैं हर बात में अनुभवी बन, आगे बढ़ो। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। और ये है आज का अव्यक्त इशारा। सदैव यही कोशिश करनी है कि मेरी चलन संकल्प वाणी हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीत। संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा और कुछ समाना पड़ेगा। दिलों के मिलन के लिए कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। ये मेरे संस्कार है, ये शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। ईश्वरीय नेचर अब बनेंगी तो फिर दैवी नेचर भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो अभी ईश्वरीय नेचर, तो आप सोचो कि बाबा ये भी शब्द कहती है बाप समान, तो बाप समान में किस प्रकार से ईश्वरीय नेचर हमें बनानी है, वो एक एक बात पर आप विचार मंथन करना, तो पिक्चर भी क्लियर आ जाएंगी कि बाबा का चलन किस तरह से होता, बाबा का व्यवहार किस तरह से होता, तो हमें भी अब क्या करना है। तो वो जब ईश्वरीय नेचर, ईश्वरीय चलन सामने वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, तो फिर उस अनुसार पुरुषार्थ भी कर सकेंगे। तो बाबा हमें, बाबा खुद बहुत मेहनत करते हैं हमें ऊंच चढ़ाने के लिए, तो बाबा को दिल से थैंक्स देती हैं। ओम शांति।